एकदम मुग्ध हो गए। तो कृष्ण मांग रहे हैं, बार बार वो दे नहीं रही, बस एक टक उनको निहार रही। जब कृष्ण जिद करने लगे, कहा जैसे ऐसे नहीं दूंगी, तुम मुझे मेरी गोद में बैठ जाओ, मुझे मां कह दे एक बार। कृष्ण ने ऐसे देखा, ऐसा देख कोई देख तो नहीं रहा, और फल का इतना लोभ जे रहा नहीं गया, हाथ में कुछ नहीं, दो एक दाने अटके हैं, और वो भी खड़े उससे बातचीत कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, इससे आज इसके गोदी में बैठ गया ये, और मैया कहा तो इधर उधर देखा, जब देखा जो कोई निकट में नहीं है, मैया भी दूर है, तो झट उन्हें कहा जी मैया, और उसकी गोदी में बैठ गए, एक सेकंड में उठ गए, और कहा जी दो, वो तो मुग्ध हो गई, उसका जीवन सार्थक हो गया। और वो हाथ में जितने भी आए फल कितना आएगा, थोड़े बहुत फल दिया और वो भर गया, कृष्ण अंजलि में नहीं ले सके, इस प्रकार से लेकर के और नित्य करते हुए लौट गए। यहाँ मैया दधि मंथन कर रही हैं और सब गोपियां बैठी हैं, मैया के अंचल में डाल दी, मैया बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद में वो फल लेकर के सब गोपियों को देने लगी, और फल जितना था उतना ही का उतना रहा, सब देते 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 सबको दिया, किंतु फल एक भी नहीं कमा। और इतना सुंदर मीठा, इतना सुगंधित, इतना आस्वाद, उसमें कहां से इतना फल मिला। और वो बैठी रही, छिटकी रही बहुत देर तक, न जाने कब तक बैठी रही। थोड़ी देर के बाद में जब होश आया, अपनी वो क्या टोकरी को उठाया, लेकर के चल पड़ी। जब नदी को पार करना है, जमुना जी के पास में आई, पुल तो था नहीं, देखा जी बहुत भार इसमें है, ये भार इतना कहां से आया। तो उसने खोल करके देखा, तरह तरह के हीरे जवाहरात रत्नों से भरे पड़ा। कृष्ण से लेने की कोई इच्छा नहीं की। इस प्रकार से जो लोग फल की इच्छा से नहीं, अपने हृदय का फल प्रेम, कृष्ण के चरण में यदि कोई निष्कपट भाव से कृष्ण की सेवा के लिए ही अर्पण कर देता है, कुछ मांगता नहीं, तो धन दौलत तो देते ही हैं, साथ साथ अपना प्रेम भी दे देते हैं, जिसमें वो व्यक्ति निहाल हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसने कहा जैसे धन की अब क्या जरूरत है। कृष्ण जी इसकी गोदी में बैठ गए, मैया कह दिया, अब कृष्ण से बढ़कर के कौन सा धन होगा, वही तो नीलमणि है, और ऐसी नीलमणि जिसकी कोई उपमा नहीं। बस उसने टोकरी को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, घर नहीं लौटी। कहां गई, बस ब्रज की बीथियों में पागल सी होकर के डोलती हुई, कन्हैया कन्हैया करने वाले पुत्र का भाव हुआ। कुछ दिनों के बाद में कृष्ण ने उसे गोलोक वृंदावन में स्थान दिया। यदि पुतना को धात्री गति दी हो, ऐसे प्रेम के साथ में अपना सर्वस्व दे करके और कृष्ण की गोदी में बिठा लिया हो, और कृष्ण और कन्हैया प्रेम से कह रही है, और वात्सल्य भाव उसके हृदय में है, तो कृष्ण उसको क्या माता गति ही धात्री गति देंगे, न क्या गति उसे देंगे। इसलिए अपने ब्रज धाम में उसे सदा के लिए बुला करके अपनी सेवा में नियुक्त कर ले, एक दिन नहीं निरंतर तुम हमारा दर्शन हो रहा है। एक दिन भोलेनाथ कैलाश में उनसे रहा नहीं गया, हमारे आराध्य देव इन्होंने यहां पर जन्म लिया है, बैल पर सज धज करके चढ़े, सर्पों की माला पहन ली, अद्भुत श्रृंगार किया, त्रिशूल हाथ में लिए, व्याघ्रछाला पहन लिया, और बैल पर सवार होकर के गोकुल में पहुंचे और अलख जाना वाले अलख निरंजन इधर में चारों तरफ में ये हुआ जैसे कोई एक औघड़ आया है, वो बैल पर चढ़ा हुआ है, त्रिशूल रखा, बड़ा भीषण उसके दर्शन है। उसको देखकर के सब घरों में घुसने लग गए। यशोदा मैया ने बच्चे को लेकर के अपनी गोदी में रख करके छिपा लिया और उसके लेकर के ढक करके खाट पलंग पर किसी प्रकार से सुला दिया, उसकी हवा और गंध न लगने पाए, और वो त्रिशूल गाड़ दिया दरवाजे के सामने पेड़ के नीचे और दर्शन करके ही जाएगा। बड़ा हठीला व्यक्ति, देखा जिसे ये तो कृष्ण दर्शन नहीं देंगे ऐसे, मैया तो छिपा करके रख दिया। तो उसने कहा अच्छा, वह डमरू निकाला और डमरू लगा करके बजाने लगे, डिम 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 बजाने लग गए। और उधर में कृष्ण सुन करके रोने लगे, जितना वो जोर से बजाता उतने जोर से चिल्लाते और रोने लगे। गोपियों ने कहा अरे सखी तू जल्दी से लेकर के उसको दर्शन करा दे, नहीं तो ना जाने क्या कर देगा, वो मंत्र पढ़ता है इसलिए तुम्हारा लड़का लाला रोता है, इसलिए जल्दी से उसको दर्शन करा करके चलिया। उन्होंने बच्चे के हाथ में दोनों में काले धागे, वो जो होता है ना लटकी रहता लटकन उसमें लगी रहती है, बांध दिया, गले में काला सूता पहना दिया, काला ये यहाँ टीका लगा दिया, आंखों में लंबा सा काला यहां तक कर दिया और काले कपड़े पर रख करके कृष्ण को चारों तरफ से ढक करके थोड़ा सा मुख रखा सामने और जल्दी से उसके सामने ले जा करके देखो और ये करके ऐसे झलक दे करके और फिर लेकर के चले। शंकर जी इतने में निहाल हो गए। क्या अब वो चला गया, किंतु अब कैलाश नहीं गया, पासी में कहीं कुटी निर्माण कर ली और वहीं पर कुछ दिन रहा। और जब दर्शन करने की इच्छा होती तो वहीं से डमरू बजा देता और ये चिल्लाने लगते कृष्ण। तब यशोदा मैया और सखियां कहती क्या जोगी चलो नंद भवन में, जसमती जसमती माँ तुम्हें बुलाएं, वा को लाल को नजर लगी है, तोपे राई नून करवाए
करवाए
नून करवाए। मैंने वो बच्चा रो रहा है ना, राई और नून ले करके बच्चे को मंत्र से झाड़ देता है वो जोगी और बच्चा किलक कलक करके हंसने लगता है। रह रह जोगी नंद भवन में, अब तू मत जा तू बाहर में, पहले देख करके तो घबरा रही थी और अब कह रही है कि नंद भवन में ही तू रह, इसलिए नंदगांव में नंद भवन के बीच में वो जोगी बैठा है। देखा है नंद भवन में, हाँ नंदीश्वर के रूप में वहां पर बैठे हैं। और जब जब रोता है तब तक यशोदा मैया उनको बुलाती हैं और नून और राई राई और नून से पढ़ा करके मंत्र और उन बच्चे को बुला। अरे जिनके नाम सुनने से कथाओं को स्मरण करने से मृत्यु का भय भी जम भी भग जाते हैं, सब लोग थर्राते हैं और उसको नून और राई से झाड़ रहे हैं, बतलाओ कैसी लीला। जब जब वाको लाला रोए तब तब दर्शन दीजो, तब तब ये दर्शन दें, इस प्रकार से ये कर रहे हैं। ऐसे ही कितनी प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तीसरा श्लोक उसका
भक्तैर्जितं पुनः प्रेम तस्तां शताब्रीति वन्दे।
इस प्रकार से नंद घोष में रहते हुए, घोष माने जहाँ गायों का घोष है, जहाँ गोपों का घोष है, गोपियों का घोष है, उस नंद घोष में कृष्ण अद्भुत अद्भुत सब लीलाएं करते हैं और उन सबको आनंद के कुंड में निमज्जित कर रहे हैं। किस लिए? जो परम प्रेमी नारद इत्यादि के लिए भी जो लीलाओं का दर्शन संभव नहीं है और कृष्ण को गोदी में लिए हुए कहती हैं जब तू बलवान है, और कुछ कहती बलदेव को जब तू बलवान है, और दोनों को भिड़ा देती। जब कृष्ण नीचे जाते तो कुछ ताली बजाती, बलदेव को उत्सुक करती, और जब कभी कृष्ण पराजित हो जाते तो कोई ताली बजाती। इस प्रकार से दोनों में लड़ाती, और दोनों ऐसे अभी नंगे छोटे से बच्चे, अभी चलना उतना नहीं जानते, और दोनों परस्पर में भिड़ जाते। ऐसी ऐसी लीलाओं को, ये सब लीलाओं के द्वारा आनंद के समुद्र में मग्न करते। इसी प्रकार की कितनी लीलाएं हुई, हजारों लीलाएं हैं, समय के अनुसार में हम लोग वर्णन करेंगे। अब आगे की और जो लीलाएं हैं आप लोग सुनेंगे। एक कीर्तन होगा, एक कीर्तन एक
गोप्रमानंदे छोटो भैया भोरो भारोरी मैया कृष्ण कन्हैया छोटो भैया मेरो बारोरी मैया कृष्ण कन्हैया छोटो भैया मेरो बारोरी कृष्ण कन्हैया छोटो भैया मेरो बारो री कछु मन तो तरस दात को मात बिचारो री मैया कछु मन तो तरस दात को मात बिचारो री मैया भूखन के दिनो पांग ज्ञान ने कहा बिगारो री कहा बिगारो री ज्ञान ने कहा बिगारो री मैया कहा बिगारो री ज्ञान ने कहा बिगारो री मैया ढाई बरस को श्याम सखन संग नाय में हारोरी मैया उठन के दियो मांग श्याम ने कहा बिकारोरी
बड़े दुखन के नंद बाबा ने या कू पालोरी मेरी मैया बड़े दुखन के नंद भवान या कू बड़े दुखन के नंद भवान या कू पालोरी मैया बड़े दुखन के नंद बाबाने जाको पारोरी सुन के झूठे बचन त्रास तने दीनो भारोरी मैया श्री बाऊ जी कहे
परम ब्रह्म को जिनको ब्रह्मा शंकर इत्यादि कोटि कोटि वर्षों के अपने चित्त को निर्मल बना करके भी उनका ध्यान करने में भी उनके चरण कमल नहीं आते भला उस पर ब्रह्म को सर्वशक्तिमान ब्रह्म को यशोदा जी खदेड़ रही है उसको पकड़ने के लिए काल जमन जिनको नहीं पकड़ सका जरासंध नहीं पकड़ सका था बड़े बड़े ऋषि दुर्भाषा और बड़े बड़े अक्षत ऋषि लोग नारद इत्यादि मन से भी कृष्ण को पीछे से दौड़ करके उनको पकड़ नहीं पाते आज यशोदा माँ उनको पकड़ने के लिए चलते दूसरी बात अच्छा मालूम ही नहीं किंतु तुम्हें बांध करके रखती हूं, बंधन आरंभ हो गया। गांव की सारी रस्सियां आ गई और गोपियां कह रही हैं, सखी जिसके ललाट में बंधन नहीं है और उसको तू कैसे बांध लेगी, छोड़ दे तू। किंतु यशोदा जी की आंखें भर आई हैं, लाल लाल हो गई हैं, कुछ हंस भी रही हैं, कुछ रो भी रही हैं, एक साथ बहुत से भाव आए। मैं अपने पेट से निकलेंगे, लाला को बांध नहीं सकती, नहीं बांध सकी। क्यों नहीं? कृष्ण को बांधने के लिए साधन का वैसे ही प्रयास चाहिए साधकों का, दूसरी तरफ कृष्ण की कृपा नहीं चाहिए। उस साधन को देख करके कृष्ण का चित्त विगलित हो जाए तब ये दो रस्सी, उस रस्सी से बंधेंगे नहीं तो दो अंगुल की कमी रहेगी। साधकों की निष्कपट निरंतर उत्कंठामय प्रयास होना चाहिए। यदि उत्कंठा नहीं रही भगवान को पाने में, अच्छा बांध तो लूंगा, कृष्ण तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए उत्कंठामय प्रयास होना चाहिए, खाना पीना सब कुछ छूट जाए, तन्मय होकर के उनके लिए प्रयास करें और कृष्ण उसको ऐसा दे करके उनका हृदय द्रवित हो जाएगा। कृष्ण सोच रहे कि मैया हमको न बांधे, सखा लोग हमको गाय चराने, सखा लोग मेरे लिए खेलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिदान सुबल मधुमंगल लवंग लता अर्जुन, यदि मैया मुझे बात देगी और इन बच्चों के सामने तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और फिर मैं खेल नहीं सकूंगा। कितनी गोपियां हमारे दर्शनों के लिए आएगी, मुझे गोदी में उठाएंगी, चुंबन करेंगी, प्यार करेंगी, दुलार करेंगी, ये नहीं हो सकता। गायें हजारों खड़ी हैं, लाखों कृष्ण के बिना देखे दूध नहीं देती, बछड़ों के लिए दूध नहीं देती, कृष्ण के लिए दूध देती, आज उनका भी ये दूध देना नहीं हो सकता। जब ही चाहती उनकी जोग माया वहां पर उपस्थित हो गई, रस्सी बढ़ रही है, मैं सर मिलो रस्सी लंबी हो गई, द्रवित हो जाए। वो यही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी बहाने से कोई हमारी सेवा करे, हमको भजन करे, बस यही देखते हैं। वैसे तो वो सब समय प्रसन्न है, इसलिए हम लोग जब तक ऐसा साधन नहीं करेंगे और उनका चित्त द्रवित नहीं हो जाएगा तब तक बंधन में नहीं आएंगे। हमारे रामानुजाचार्य के संतों ने इसके लिए एक उदाहरण दिया है, एक मार्जार न्याय एक मरकट न्याय। मरजार माने बिल्ली, मरकट माने बंदर। जैसे बंदर अपने बंदरी अपने बच्चे को पकड़ती नहीं है, एक महल से दूसरे महल, एक पेड़ से दूसरे पहाड़, एक डाल से दूसरी डाल में जाना होगा तो वैसे खड़ी हो जाएगी और उसका बच्चा आकर के या तो ऊपर से पकड़ लेगा या नीचे से उसको पकड़ लेगा, बंदरी नहीं पकड़ेगी और वहीं से कूद जाएगी, उछल जाएगी। यदि बच्चा गिर गया तो अब अपना बच्चा नहीं मान करके कभी भी जीवन में उसको नहीं छोएगी, वो ऐसे बंदरी भी होती है, फिर कभी उस बच्चे को नहीं छुएगी। इसलिए इसमें यह बंदर का बच्चा ही अपनी मैया को पकड़ता है और मैया उछलती कूदती इधर उधर जाती है। इसलिए कहते हैं साधक अपना परिश्रम करे, बंदरी को मान लो वहां पर उपास्य, और बंदर का बच्चा क्या है? उपासक। उपासना के द्वारा ही भगवान मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये आधा उदाहरण होगा। दूसरी तरफ में बिल्ली का बच्चा देखो, बिल्ली का छोटा सा बच्चा करता रहता है, देखता है वो अभी माँ को पकड़ता नहीं, कुछ नहीं करता है, मैं आएगी अपने मुख में उसको ले लेगी और ले करके करता रहेगा, वहाँ से वहाँ ले जाएगी, बच्चा नहीं पकड़ेगा मैया को। यदि भगवान को कृपा करना है तो वो भगवान को कृपा करेंगे, हम लोग साधन क्या करेंगे, क्या हम साधन करेंगे, ऐसा जो सोचता है उनको भी भगवान नहीं मिलेगा। बिल्ली का बच्चा तो कुछ नहीं करता, हम क्यों करेंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ये एक रस्सी और वो के एक रस्सी, आया समझ में, हमारा परिश्रम भी होना चाहिए। अर्थात बंदर का बच्चा जैसा पकड़ता है और इधर में बिल्ली अपने बच्चे को जैसे पकड़, दोनों मिलकर के एक कंप्लीट उदाहरण हुआ। कुएं में कोई गिर पड़ा, ऊपर से रस्सी दो और बच्चा कुआं से रस्सी को नहीं पकड़ता तो वो कैसे ऊपर उठेगा। इसलिए भगवान की दया सब पर है, ऐसा कोई नहीं है जिस पर उनकी कृपा नहीं है, वो कृपा की रज्जू फेंके, किंतु हमको तो पकड़ना होगा, हम पकड़ेंगे नहीं तो ऊपर में कैसे आएंगे। इसलिए साधकों को अपना यथेष्ट परिश्रम करना चाहिए और तब भगवान की कृपा तो सब ही है, इस तरह से भगवान की कृपा हो जाए। इन दोनों को चीज को हम लेकर चलेंगे, इसके उदाहरण में यही छिपा हुआ है रहस्य। अब आगे की कथा आप लोग समझ रहे हैं। कृष्ण की मनोहर लीलाओं को श्रवण किया, अघासुर का भी उन्होंने वध किए, बकासुर इत्यादि का वध किया। ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, उनको किसी प्रकार से लीला में संदेह नहीं हुआ, न तो उन्होंने परीक्षा लेने की कोई चेष्टा, वो तो भगवान की मधुर लीलाओं का रसास्वादन करना चाहते थे। इसके विषय में हम लोग शाम को इस पर हम विचार करेंगे। अभी कृष्ण की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मधुर लीला पर हम चल रहे हैं। कृष्ण गऊ और बछड़ों को लेकर के सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। गोचारण का कुछ लक्ष्य है, ये बछड़े भी साधारण नहीं है, श्रुति के ये सब मंत्र हैं। बछड़ों को लेकर के जा रहे हैं, कितना मनोहर रूप है, कैसी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, स्थिर जंगम समस्त प्राणियों का चित्त मुग्ध कर लेते हैं। एक दिन जा रहे हैं, ब्रज की बीथियों से निकले, लाखों लाखों बछड़ों को लेते हुए, लाखों लाखों सखाओं को लेकर के चल रहे हैं वृंदावन के वन में उनको चराने के। जब घर से निकले, जितनी गोपियां थीं, गोप थे, यहाँ तक कि अंधे व्यक्ति भी हों, सभी कृष्ण को दर्शन करने की लालसा से दरवाजे पर खड़े हो गए, अट्टालिकाओं में खड़ी हो गई, जो श्रृंगार कर रही हैं श्रृंगार को आधे छोड़ करके वहाँ पर उपस्थित हो गई। कोई सास अपनी नवेली बहू को कह रही है, मत जाना खबरदार, यदि जाएगी देखने के लिए तो काला सांप तुमको डस देगा और वो विष कभी नहीं उतरेगा, जब तेरी लाली किस लिए जा रही और तुम किस लिए जा रही, तुमको नहीं डसेगा, कहीं तुम अभी नई आई है ना, इसलिए तुमको कह रही हूँ, मत जाना खबरदार। और ये कह करके वो सासुरी चली गई और ये भी पीछे से रह न सकी घर में, ये भी आ गई, ये आकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। कृष्ण को बड़ी उत्कंठा और लगन से देख रही है, कृष्ण बंसी बजाते हुए चल रहे हैं, वो भी कुछ खोज रहे हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़े, देखे उनकी नजर उस पर पड़ी और उनकी नजर उस पर पड़ी। कृष्ण उसकी उत्कंठा को समझ गए, उन्होंने एक बछड़े की पूंछ को पकड़ा और बछड़ा भी कूदता हुआ उधर चला, और बछड़ा ऐसे कूदते हुए एकदम ठीक दरवाजे पर पहुंचा, और ये भी कृष्ण भी उसके पीछे मानो पकड़ने के बहाने ही चल रहे हैं और कोई मतलब नहीं। इसलिए ठीक दरवाजे पर जहाँ वो किशोरी खड़ी हुई नवेली जो थी वहीं पर पहुंचे, बछड़ा को एक तरफ में रख करके, और उन्होंने अपनी बंसी ली प्रेम भरी निगाह से उसके तरफ में देखते हुए, और अपनी बंसी लेकर उसके कपोलों में स्पर्श करा, और इस तरह से प्रेम भरी चितवन से देखी उसका हृदय निकाल करके अपने साथ में लेकर के चल पड़े। वो बेचारी ठगी सी खड़ी रह गई, उसका मन भी चला गया, उसे पता नहीं ये कब से खड़ी है। बछड़े चले गए, ग्वाल बाल चले गए, कृष्ण चले गए, धूल भी अब शांत हो गई, चारों तरफ ब्रज शांत हो गया। उसकी सास ने देखा जी कहाँ गई, दरवाजे पर देखा जी खड़ी है, अनमनी सी खड़ी है। वो आकर उसको पकड़ करके हिलाया, अरे तुमको कहा था ना जी काट देगा सांप तुमको, लो देखा ना कृष्ण साथ ने तुमको काट दिया, ये बीस साजी नहीं निकलेगा, चल घर में चल। उसको पकड़ करके ले आई, बैठा दिया, देखा जी इसका मन कैसे लौट आए। कहते देखो घर में दही रखी है, वो हणिया को ले आ और इसको मथन आरंभ कर। उसके कहने से वो घर में गई, एक हड़िया उठा ले आई और सास तो अपने काम में चली गई, और ये उसको मथने लगी, किंतु दही नहीं राई थी, राई मथ रही नहीं मथ रही है, उसको होश नहीं मैं राई मथ रही हूं या दही मथ रही। सास ने आया आई और देखी, अरे तू ये क्या कर रही, हमको राई मथने के लिए दिया तू दही नहीं ला सकी। उसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा अपना बेटा उसके गोदी में दे दिया, सिर पर एक कलश दो कलश तीन कलश रख दिए, लंबी सी रस्सी मोड़कर और उसके हाथ में दे दिए, और दे करके कहे जाओ कुएं से पानी ले आ। सोचा जी परिश्रम करने से भी आने जाने से उसका चित्त ठीक हो जाए, बाह्य ज्ञान आ जाए। वो बच्चे को लेकर के खड़े लेकर के हाथ में भी खड़े उस पर भी खड़े रख दिए, डोल ले लिया और डोलची मैंने पानी भरने का और डोरी भी ले ली और चल गए। वहाँ पर कुएं में भीड़ लगी हुई है, आज का दिन नहीं पहले का दिन, दूर से पानी लाना पड़ता था। आजकल तो लड़कियों को भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोई काम नहीं, चक्की पीसना जानती नहीं, मूसल चलाएंगी नहीं, दाल तो गलेंगी नहीं, स्कूल कॉलेज में जाएंगी, और इसके बाद में कोई काम नहीं, झाड़ू बहारनी भी नहीं जानती। तो पहले ऐसा नहीं होता था, परिश्रम करती थी, परिश्रम करने से भूख लगती थी और भूख लगने से सौंदर्य बना रहता था, होठों पर लाली रहती थी, प्लास्टिक देने की जरूरत नहीं रहती थी, लिपस्टिक प्लास्टिक ना लिपस्टिक हमको आता भी नहीं। अरे किशोरी अवस्था में ही बूढ़ी देखती हैं, उनको चश्मे की जरूरत होती है, और वो पानी भरती थी, 10-20 शेर का किलो वजन का मूसल चलाती थी, चक्की पीसती थी, स्वास्थ्य अपने आप कमल की भांति खिला रहता था, शरीर में ताकत रहती। तो वो चली गई वहाँ, वहाँ कुएं पर जाकर के बच्चे को रख दिया, घड़े को उतारा उसको भी रख दिया, और घड़े के अंदर में रस्सी की फांस लगा करके उसको लगाएगी कुएं में। तो उसने कुएं में क्या किया, वहाँ पर रख करके फांस तो लगाया रस्सी में और बच्चे के गले में ही फांस लगा दिया। उसको पता नहीं कि ये घड़ा है ना बच्चा है। जब लगाया और जब को उठा करके कुएं में देने वाली थी, इतने में सब औरतों ने जो गोपियां थी झट पकड़ लिया, कहा ये क्या कर रही, और इसको क्या हो गया, इसको पता नहीं कि घड़ा है ना बच्चा है, इसको किसी ने कहा जो इसको भूत लग गया है। और जो जानकार थी, जो जानने वाली थी इस रहस्य को, उन्होंने कहा जो भूत नहीं, नंद का पुतल इसको लग गया। तो इस तरह से अपनी मधुर लीलाओं से क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या महिला, क्या बच्चे, पशु पक्षी कीट पतंग मयूर कोकिल सबको भी मदमत्त कर देते। ये एक बार जिसकी तरफ में देख लेते वो निहाल हो जाता और अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में, ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की। उसमें से हमने एक लीला कही, अब कथा समाप्त होगी, एक कीर्तन कीजिए और इधर आरती की व्यवस्था।
गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् पुष्पम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे कङ्गयमान। भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणार्। आज प्रातःकालीन हरि कथा में कृष्ण गोकुल से वृंदावन में अपने परिजनों के साथ में आए हैं। वृंदावन के अंतर्गत ही छठी करा में वो सब गाड़ियों के चक्र व्यूह बनाकर और अपने अपने पर्णकुटी को उन्होंने बना लिया है। उस समय में कृष्ण वहाँ के दृश्य देख करके और बलदेव जी बड़े लुप्त हुए। पासी में जमुना नदी बह रही, पासी में निकट में गिरिराज गोवर्धन, सुंदर पशु पक्षी कोयल मयूर मृग स्वच्छंद गति से घूम रहे हैं और पक्षी कलरव कर रहे हैं। इस वृंदावन में सदा बसंत ऋतु छाई रहती। कृष्ण ने सबसे पहले आरंभ किया बछड़ों को चराना और बछड़ियों को, छोटे छोटे बछड़ी और बछड़ों को बालकों को लेकर के विचरण बनो बनो में करते, खेल इत्यादि करते सवेरे, ये सब बतलाया गया। कंस का अनुचर और सखा अभासुर विराट अजर का वेश बनाकर उन सबको मारने के लिए वहाँ पर आया, विराट रूप धारण किया। ऐसे मालूम है कोई पर्वत है, उसमें कंदराएं हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें से बड़ी तीव्र दुर्गंध उसके मुख से आती थी। सड़े गले जानवरों को उसने खा रखा था और विष निकल रहा था। ग्वाल बाल कृष्ण के मना पर भी करने पर भी बछड़ों को समेत लेकर उत्कंठा से भीतर में पहुंचे। तब तक मुख बंद नहीं किया जब तक कि कृष्ण नहीं आ गए। कृष्ण सोचा अब क्या किया जाए, ये तो इसके मुख में घुस गए। फिर कुछ उन्होंने विचार करके वो भी उसके अंदर में मुख में गए। जोगुली तपस्या करते हैं ध्यान में, जिस भगवान को हृदय में धारण करने की चेष्टा करते हैं और भगवान नहीं आते, और वो खुद आज अपने समस्त परिकरों के सहित अपने आप उसके मुख के अंदर निकले। उसने मुख बंद कर दिया और कृष्ण लोहे की धधकते हुए गोले के समान बन करके उसके गले में अटक गए, प्राण उसके यहाँ से निकल गए। और उसकी ज्योति कृष्ण के चरण कमलों में, जब तक कि कृष्ण उसके मुखारविंद से निकले नहीं तब तक वो घूमती रही आकाश में, और जब ही निकले तभी वो ज्योति उनके चरणों में समा गई। इंद्र ब्रह्मा इत्यादि सब देवतागण विमानों पर बैठ करके ये दृश्य को देख रहे थे। ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। ओहो, जिन जिन बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को ये ब्रह्म गति प्राप्त नहीं होती और उसको ये गति प्राप्त हो गई, हमारे प्रभु तो बड़ी विचित्र लीला कर रहे हैं। इनकी दो एक और विचित्र लीलाओं का मैं दर्शन करूं, यदि उन पर छोड़ दिए होते तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने सोचा और इनकी लीलाओं को और देखने के लिए मुझको कुछ प्रयास करनी चाहिए, इसलिए अपना प्रयास किया। उन्होंने ब्रह्मा जी ने सोचा कि इन बछड़ों को और ग्वाल बालों को यदि कहीं छिपा दिया जाए तो ये क्या करते हैं प्रभु, कोई शंका की बात नहीं थी न कोई परीक्षा की बात थी। जिस प्रकार से नारद इत्यादि अपने परिकरों में भगवान जोगमाया का प्रवेश करा करके विभिन्न प्रकार की लीलाओं को प्रकट करते हैं, आज कृष्ण की कुछ इसी प्रकार की कुछ लीला क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। जोगमाया से ब्रह्मा को वहाँ से बुला दिया, प्रेरणा की जे इनके बछड़ों को और ग्वालों को हरण करो। ये ब्रह्मा जी का प्लान नहीं था, ये प्लान किसका था, किंतु उन्होंने सोचा जे ये हमारा प्लान है, यही उनकी गलती है। और कृष्ण की लीलाओं को अपने प्रयास से देखें क्या करते हैं इच्छा। कृष्ण विचार कर रहे हैं गोपियां हमारे गांवों की हमको अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करते हैं और सोचते हैं जब कृष्ण हमारा बच्चा हो, हमारा पुत्र हो और उनको अपना दूध स्तंभ का पिलाएं, उनको लालन पालन करें, तो भला कृष्ण कल्पतरु हैं, वंशा कल्पतरु, इसकी इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ठहर जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। और जितनी गायें थी अपने बछड़ों से ही वे अधिक कृष्ण को प्यार करते। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग भी ठहर जाओ, मैं तुम सब लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। जितनी गोप कुमारियां थीं अभी तो छोटी थी ना, जैसे देखते हैं कि रंगेश्वर के मंदिर में यहाँ से झुंड बना करके कीर्तन करती हुई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब उम्र की लड़कियाँ, यहाँ तक कि 8, 9, 6, 5 वर्ष की भी लड़कियाँ हाथों में कलश लेकर के उसमें पानी भर करके शंकर जी पर जल चढ़ाने जाती हैं। कार्तिक महीने में विशेष करके भोर के समय में जाड़ा पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, और उस समय स्नान करके वो छोटी छोटी बच्चियाँ, किशोरियों की तो बात क्या, सब जाती हैं। उस समय कृष्ण को देख करके मन ही मन ये लुप्त हो रही थी, यदि पति मिले तो कृष्ण जैसा ही, वो सभी कह रही थी। और भी तरह तरह की भक्त लोग चाहते थे, ब्रजवासी लोग चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी को एक बहाना बनाया। और ब्रह्मा जी के मीश ये सब चीजों की वंशाओं को पूर्ण करने की लालसा से ब्रह्मा जी को आकर्षण करके वो आकाश मार्ग में ले आए। ब्रह्मा जी ने सोचा जे मैं ही देखूं, बहुत से ऐसे काम होते हैं भक्तों में या हम लोगों में भी जो प्रभु कराना चाहते हैं वो करना पड़ता है, तो वही ब्रह्मा जी आए, लालसा हो गई इनकी और लीलाओं को देखूं और बछड़ों को चुराने का प्रयास कर, किंतु ये काम था जोगमाया का। जोगमाया ने ब्रह्मा के द्वारे बछड़ों को और ग्वालों को हर लिया, और कृष्ण उनको देख कहाँ गए, पहले जब ग्वाल बालों का हरण किया बछड़ों को तो बच्चे बोले अरे ये बछड़े किधर गए, कृष्ण ने तुम ठहरो मैं अभी लाता हूँ, बंसी बजाऊंगा सब आ जाएंगे, उनकी बात पर विश्वास किया, वो तो खाते रहे। और कृष्ण वहाँ आगे गए, उनको ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं पाया, जब फिर देखा जैसे वहाँ तो नहीं आ गए, फिर लौट करके उस स्थान पर देखा जो बछड़े भी नहीं है अब बछड़े कहाँ गए, बछड़ों को भी चोरी कर दिया। उस समय में कृष्ण के हाथों में दधि और अन्न का द्रास, हाथों में टेटी इत्यादि के जैसे स्वाभाविक रूप में होते हैं आचार इत्यादि ले लिया, मिर्च की पकौड़ी और सब जो चीजें होती हैं ये लेकर के मुख सुखा हुआ है, अब खोज रहे हैं कहाँ गए। उस समय में ब्रह्मा जी ने देखा जी अच्छा तो ठीक है मैं जरा घुमाऊं, एक निमिष के लिए अपने लोग गए और वहां से आकर के देखा जी से कृष्ण खेल कर रहे हैं, देखा जी वहां है कि नहीं, वहां पर भी यहां भी देख रहे हैं। इसमें से उन्होंने देखा अच्छे असल बच्चे कौन है, जिनको हमने चुराया था वो कौन है। अब वो समझ ना सके, बहुत वहां पर खड़े रहे, समाधि लगाया, ध्यान लगाया, किंतु निर्णय नहीं कर सके जो कंधरे में जो बच्चे मूर्छित होकर के पड़े हैं वो, अथवा कृष्ण के साथ में जो बाल बाल और बछड़े उनके साथ में चर रहे हैं, ये दोनों में से असली कौन है नकली कौन है। ये नकली हुए तो कहां से हुए, बहुत समाधि में भी गए बत कुछ किया उनको पता नहीं चला, या पता नहीं चला। उधर में हमारे श्रीमान शुभानंद ने बतलाया, बलदेव जी भी उनकी बातों को जान गए, एक वर्ष हो गया पुराने जो बछड़े हैं एक वर्ष से अधिक वाले, उन पर उन गायों की ममता अधिक है नए बच्चों की अपेक्षा, नए बच्चे पर होनी चाहिए ममता न होकर के पुराने बछड़ों पर, और पुराने जो बच्चे हैं जो थे